नमस्कार भारत, तारीख 27 दिसंबर दिन बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। चीन ने पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान को न्योता दिया, चीन का मकसद है क्या?
चीन का पाकिस्तान के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, वो ये नहीं चाहेगा कि अभी तक पाकिस्तान जिस तरह का रोल प्ले करता रहा अफगानिस्तान में, उसमें पाकिस्तान को किसी तरह का नुकसान हो।
जयराम ठाकुर आज शपथ लेंगे हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में, खुद की सीट हार कर सीएम नहीं बन पाए प्रेम कुमार धूमल।
नहीं, मैं हमेशा दूसरों को दोष देने की अपेक्षा आत्मनिरीक्षण आत्मचिंतन करने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है हम नहीं कहीं कमी रही होगी।
कुलभूषण जाधव से उनकी माँ और पत्नी की मुलाकात के तरीके पर भारत ने जताई आपत्ति। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप राय से। चीन ने कहा है कि वो चाहता है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अफगानिस्तान शामिल हो। चीन का कहना है कि इससे इलाके में शांति और आर्थिक प्रगति होगी। इस मुद्दे पर बीजिंग में हुई त्रिपक्षीय बैठक के बाद चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि आपसी सहयोग के लिए तीनों देशों ने रजामंदी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चीन पाकिस्तान के आधारभूत ढांचे में करीब $50 अरब का निवेश कर रहा है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। कहा जा रहा है कि 70 सालों में ऐसा पहली बार है जब सत्ता का लोकतांत्रिक तरीके से हस्तांतरण हो रहा है। चुनाव में देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति जोसेफ बाओकाई और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जॉर्ज विया खड़े हैं। मौजूदा राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सिरलीफ, जो कि अफ्रीका की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, इस बार मैदान में नहीं हैं। मतदान करने के बाद जॉर्ज विया ने अपनी जीत की उम्मीद जताई।
I'm not associated with losing. So this victory is certain.
मैं कभी हारा नहीं हूं। आज की जीत पक्की है और मैं जीतने जा रहा हूं। बाओकाई विया के सामने कभी नहीं जीत सकते। एलेन जॉनसन जीत सकती हैं क्योंकि वो अपवाद हैं। हालांकि जो हो चुका है वो दोबारा नहीं हो सकता। ये थे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉर्ज विया के शब्द। कोसोवो में एक अलग किस्म का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारत की रेलिंग पर सैकड़ों टाई लटका दी है। असल में प्रधानमंत्री रामुश हरादिनाज ने अपना वेतन दोगुना बढ़ा लिया है। जब उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने कहा कि कपड़ों पर उनका ज्यादा खर्च होता है क्योंकि उन्हें टाई पहनना पड़ता है। गुरिल्ला कमांडर रह चुके रामुश का वेतन अब देश में औसत वेतन से 10 गुना अधिक हो गया है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री अपना वेतन कम करें। टाई और शर्ट के लिए अब उन्हें अपना वेतन बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले ली है। अब तक हमने 300 टाई जुटाई है, इसलिए उन्हें अगले 300 दिनों तक टाई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो अपनी तनख्वाह कम कर सकते हैं। हम उन्हें शर्ट भी मुहैया कराएंगे। ये थे प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले कुश्त्रीम मेहमेती के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने वाले दो अधिकारियों पर अमरीका ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। पिछले हफ्ते जारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताजा प्रतिबंध सूची में भी इन दोनों अधिकारियों का नाम था। ठोस ईंधन से चलने वाली मिसाइल विकसित करने में किम जोंग सिक की अहम भूमिका मानी जाती है, जबकि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल हासिल करने के पीछे कथित रूप से री प्योंग चोल का दिमाग है। इस बीच रूस ने कहा है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ अमरीका की आक्रामक बयानबाजी अस्वीकार्य है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि अफगानिस्तान की सीमा पर अमरीकी ड्रोन हमले में हक्कानी नेटवर्क के कमांडर समेत दो चरमपंथी मारे गए हैं। अधिकारियों के अनुसार कुर्रम कबायली इलाके में एक गाड़ी को निशाना बनाकर मिसाइल दागी गई थी। सीमा पर विदेशी और अफगानी फौजों पर हुए कई हमलों के लिए हक्कानी नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ब्राजील की सरकार ने वेनेजुएला के सबसे वरिष्ठ राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया है। एक दिन पहले कनाडा ने भी वेनेजुएला के राजदूत को निष्कासित कर दिया था। पिछले हफ्ते वेनेजुएला ने घरेलू मामलों में दखल का आरोप लगाते हुए इन दोनों देशों के राजदूतों को निष्कासित कर दिया था। मार्च में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने औपचारिक रूप से अपना नामांकन दाखिल किया है। माना जा रहा है कि अगर वो जीतते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में उनका यह चौथा कार्यकाल होगा। बीते सोमवार को विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान को न्योता दिया है। बीजिंग में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें तीनों देशों ने आपसी मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन अरबों डॉलर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक बढ़ाना चाहता है ताकि शांति की स्थापना की जा सके। पाकिस्तान से संबंध बिगड़ने के बाद अफगानिस्तान और भारत बहुत करीब हैं। अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत ने काफी निवेश किया है। हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच डोकलाम जैसे तनाव पैदा करने वाली घटनाएं भी हुई। ऐसे में चीन के न्योते से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए संदीप राय से।
अरबों डॉलर निवेश वाली अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना में चीन ने अफगानिस्तान को शामिल करने का न्योता दिया है। चीन ने कहा है कि वो इस परियोजना को पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक बढ़ाना चाहता है। उसने तर्क दिया है कि इससे इलाके में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध में बीजिंग में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई। बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि इस मुद्दे पर तीनों देशों के बीच बात आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों ने इस बात पर रजामंदी दी है कि वे भाईचारे और एक साथ रहने के लिए जितनी जल्दी होगा अपने संबंध सुधारेंगे। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है कि वे अपनी जमीन से किसी भी व्यक्ति या सैनिकों को ऐसी किसी प्रकार की कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देंगे जिससे दूसरे पक्ष का हित प्रभावित होता हो। ये थे चीनी विदेश मंत्री वांग यी के शब्द। आर्थिक कॉरिडोर का दायरा अफगानिस्तान तक बढ़ाने को लेकर तीनों देशों के बीच पहली बार ये उच्च स्तरीय बैठक हुई है। वांग ने कहा है कि इस पर तीनों देश धीरे धीरे सहमति बनाएंगे और सावधानी बरतते हुए छोटे प्रोजेक्टों को पहले हाथ में लेंगे। संयुक्त बयान में चरमपंथ से मिलकर मुकाबला करने की बात कही गई है। आर्थिक कॉरिडोर मसले पर चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों की अगली त्रिपक्षीय वार्ता काबुल में होगी। असल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते को सामान्य करने के लिए चीन पहले भी कई कोशिशें कर चुका है, लेकिन उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। आर्थिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाने की योजना से भारत में भी चिंता है, क्योंकि उसका अफगानिस्तान में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि इस त्रिपक्षीय वार्ता का नतीजा क्या निकलता है।
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अगर अफगानिस्तान चीन के इस प्रस्ताव के लिए हामी भरता है तो इसका भारत पर क्या असर होगा? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत से और पूछा कि इस प्रस्ताव के पीछे चीन का मकसद क्या है।
चीन आर्ग्यूमेंट दे रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप और घनिष्ठ होती है तो उसका फायदा उस रीजन को होगा, चीन को होगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वो करना चाह रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि चीन भी ये रियलाइज करता है कि जो उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें दो देश भारत और अफगानिस्तान अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उसका भविष्य कुछ आगे बढ़ नहीं पाएगा।
चीन के विदेश मंत्री ने जो कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इस बात को लेकर सहमत हैं कि वो अपनी जमीन पे किसी भी ताकत को या किसी को ऐसा कोई काम नहीं करने देंगे जिससे कि कोई दूसरा जो है उसको नुकसान पहुंचे।
कहीं पर ये एक जो समीकरण बन रहा है वो ये बन रहा है कि भारत और अफगानिस्तान और अमेरिका के जो संबंध है समय काफी घनिष्ठ हो गए हैं और उसके चलते कहीं पर पाकिस्तान अलग थलग खड़ा नजर आ रहा है। उसके चलते चीन, क्योंकि चीन का पाकिस्तान के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, वो ये नहीं चाहेगा कि अभी तक पाकिस्तान जिस तरह का रोल प्ले करता रहा अफगानिस्तान में उसमें पाकिस्तान को किसी तरह का नुकसान हो। तो इसके चलते चीन अपनी तरफ से एक प्रोएक्टिव पुश दे रहा है और जाहिर सी बात है चीन ये भी नहीं चाहेगा कि जो भारत का रोल है वो इतना अहम बने कि भारत को चीन को अपनी कंसल्टेशन में लेना पड़े, क्योंकि चीन अभी भी भारत के प्रति जिस तरह की पॉलिसी अपनाता रहा है जिस तरह की उसके चलते यही पॉलिसी रही है कि आप भारत को अलग थलग करेंगे और बाकी देशों को लेकर आप आगे बढ़े। तो उसमें मुझे लगता है कहीं पर वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को साथ लाकर ये मैसेज देना चाह रहा है कि अगर ये दोनों देश भी चीन के साथ जुड़कर काम करेंगे तो न सिर्फ इन देशों का अच्छा होगा लेकिन और जो देश हैं जिनको चीन अपना दोस्त नहीं मानता है जैसे अमेरिका और इंडिया है उनको अलग थलग किया जा सकता है।
कितनी संभावनाएं हैं कि अफगानिस्तान इसके लिए हाँ करेगा कि हाँ इसको एक्सटेंड कीजिए हमारे तक, और हाँ करता है इसके लिए तो एक्सटेंशन से उसको क्या फायदा होगा और भारत के लिए ये कितनी बड़ी चिंता की बात होगी?
देखिए, भारत के लिए चिंता की बात इसलिए होगी कि भारत ने पूरे कॉरिडोर का पोजीशन इसलिए किया है क्योंकि उसमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल इन्वॉल्व है जहां तक भारत का संबंध है, और वो है चीन भारत की सॉवरेंटी को क्वेश्चन कर रहा है। भारत पूरे कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, जहां तक भारत का सवाल है पाकिस्तान ने एक हिस्से पे कब्जा किया हुआ है। तो अब चीन ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया है। वहां एक तरफ चीन ये कहता था कि चीन जो है वो बायलैटरल डिस्प्यूट्स में एक ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करेगा, और उस पोजीशन से चीन इस पोजीशन पर आ गया है जहां पर वो अब इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान का है। तो इसके चलते भारत ने एक सॉवरेंटी के इशू पर अपनी ऑपोजिशन को जाहिर किया है, और अगर चीन पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करता है तो कहीं पर यह भारत को ऐसा महसूस जरूर होगा कि जो इन्वेस्टमेंट जो रिलेशनशिप भारत ने अफगानिस्तान के साथ अभी तक बनाई है उसका कोई खास लाभ भारत को नहीं हो रहा है।
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर अफगानिस्तान तक पहुंचता है तो भारत पर क्या असर होगा? विश्लेषण कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। बीजेपी ने हाल में ही संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में से 68 में से 44 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर किस तरह का माहौल है और किन किन लोगों को मंत्री बनाए जाने की संभावना है, ये जानने के लिए आदर्श राठौर ने बात की शिमला में मौजूद पत्रकार पंकज शर्मा से।
आज इसका शपथ समारोह है जिसमें जयराम ठाकुर जो है 13वें मुख्यमंत्री होंगे हिमाचल प्रदेश के। पूरे शपथ समारोह को एक तरह से पूरे भव्य तैयारी के साथ इसको बहुत बड़ा रूप दिया गया है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, अमित शाह जी रहेंगे और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस समारोह में रहेंगे।
तो किस तरह से किन किन का नाम अभी तक चल रहा है, जो कुछ देर में स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन अभी तक क्या माने कि कौन कौन मंत्री बन सकते हैं?
हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं तो हमेशा ये देखा जाता है कि सभी जिलों को नेतृत्व दिया जाए, लेकिन इस बार जिस तरह से कोशिश की गई है और जिस तरह से संभावित नामों की जो सूची अभी तक मिली है उसमें शिमला से सुरेश भारद्वाज का नाम है, मंडी डिस्ट्रिक्ट से क्योंकि सीएम खुद भी हैं और यहां से वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह ठाकुर भी हैं, उनका नाम भी चल रहा है, और क्योंकि कांग्रेस से अनिल शर्मा जी आए थे तो उनको भी संभावित सूची में उनका नाम रखा गया है। और जैसे हम जानते हैं कि कांगड़ा जिला जो सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, जहां से 15 सीटें हैं और बीजेपी ने इनफैक्ट वहां से 11 सीटें जीती हैं, तो बीजेपी के लिए उस जिले से भी जो नेतृत्व है तो किशन कपूर, ज्वालामुखी से रमेश धवाला जी और शाहपुर से सरवीन चौधरी जो कि एक महिला है उनका भी नाम दावेदारों में है। अगर हम ट्राइबल की बात करें तो उसमें रामलाल मारकंडे का नाम है और चंबा से हंसराज जी और विक्रम जरयाल रेस में शामिल है। और इसके अलावा अगर हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लगातार 3 बार जो गोविंद ठाकुर जी हैं मनाली से जीते हैं तो वो भी दावेदारों में अपना सशक्त दावा पेश कर रहे हैं, जिनके नामों पे अभी तक चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है। और एक उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी कोशिश करेगी कि सभी जिलों का जो नेतृत्व है उसको इस ढंग से एडजस्ट किया जाए कि ताकि किसी को कोई नाराजगी न रहे।
पंकज शर्मा बता रहे थे कि किन किन चेहरों को नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला विधानसभा सीटों के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। राज्य के गठन से लेकर अब तक मंडी से कई बड़े नेता निकले मगर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए, मगर अब यहां की सिराज सीट से विधायक जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उनके अब तक के राजनीतिक सफर और भविष्य की चुनौतियों के बारे में सुनिए आदर्श राठौर से।
एक पिछड़े हुए इलाके के बेहद आम परिवार में जन्मे जयराम के राजनीतिक सफर की शुरुआत कॉलेज से हुई, जहां वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। संगठन से जुड़ाव बना रहा और 1986 में वो एबीवीपी की राज्य इकाई के संयुक्त सचिव बने। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में आए और इसके प्रदेश सचिव और फिर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। जयराम ठाकुर की पत्नी साधना मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं, लेकिन जब वो काफी छोटी थीं तब से उनका परिवार जयपुर आकर बस गया था।
वो भी एबीवीपी की सक्रिय सदस्य थीं और यहीं पर उनकी मुलाकात जयराम ठाकुर से हुई थी। एक तरफ जयराम ठाकुर सक्रिय राजनीति में व्यस्त हो गए, दूसरी तरफ डॉक्टर साधना मेडिकल ब्लड डोनेशन कैंप और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में सक्रिय रहीं। चुनावी राजनीति में जयराम ठाकुर 1993 में ही आ गए थे। चचियोट सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हार का सामना करना पड़ा था, मगर पार्टी ने 5 साल बाद फिर उन्हें मौका दिया। उन्होंने चुनाव लड़ा और 1998 में पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे। चचियोट सीट पुनर्सीमांकन के बाद सिराज बन गई, लेकिन जयराम ठाकुर की जीत का सिलसिला जारी रहा। साथ ही उन्होंने पार्टी संगठन में भी विभिन्न जिम्मेदारियों को संभालना जारी रखा। और इस बार जयराम ठाकुर जब अपने इलाके में प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने जनता से कहा था कि मैं आपके आशीर्वाद से सब पदों पर रहा। इस पर लोगों ने कहा कि अब वो उन्हें सीएम देखना चाहते हैं। जयराम ने कहा था ये पार्टी ने तय करना है। जरा सुने।
कोई पद नहीं बचा प्रदेश में जिस पद पर आपने अपने विधायक को नहीं पहुंचाया। विधायक बना, चेयरमैन बना, पार्टी में अनेकों जगह पदाधिकारी बना, जिला का अध्यक्ष बना, युवा मोर्चा का, यूथ का, स्टेट का प्रेसिडेंट बना, पार्टी का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बना, मंत्री बना, मुख्यमंत्री, और उसके लिए आपको बताऊं मैं, देखिए पार्टी ने तय करना है।
शायद उस वक्त जयराम ठाकुर को भी नहीं पता होगा कि वो वाकई इस बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। संयोग ये रहा कि बीजेपी ने आखिरी समय में जिन प्रेम कुमार धूमल को सीएम कैंडिडेट बनाया था वो चुनाव हार गए, और फिर चुने हुए विधायकों में से किसी एक चेहरे की तलाश होने लगी तो जयराम ठाकुर सबसे आगे खड़े नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका प्रभावी कार्यकाल, लगातार 5वीं बार जीतना, संघ के बीच स्वीकार्यता और 10 में से 9 सीटें जीतने वाले मंडी जिले से होना उनके पक्ष में रहा। साथ ही बीजेपी ये संदेश देने में भी कामयाब रही कि हमने एक ऐसे कार्यकर्ता को सीएम बनाया है जो एक मजदूर का बेटा है और गरीब पृष्ठभूमि से आता है। शपथ लेने के बाद जयराम ठाकुर को जो ताज मिलने वाला है वो कांटों भरा होगा। प्रदेश पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। शांत प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार की कमी और सरकारी नौकरियों में भर्तियों में पारदर्शिता की कमी जैसे कुछ ऐसे मसले हैं जिन्हें बीजेपी खुद भी उठाती रही है।
आदर्श राठौर बता रहे थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले जयराम ठाकुर के बारे में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री और अपने वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, मगर वो चुनाव हार गए। इसके बाद कुछ विधायकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की और उनके लिए अपनी सीट तक छोड़ने की पेशकश की। हफ्ते भर तक सस्पेंस बना रहा, लेकिन आखिर में साफ हुआ कि धूमल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हमारे सहयोगी अभिमन्यु साहा ने प्रेम कुमार धूमल से संपर्क साधा और पूछा कि आखिरकार क्या हुआ जो विधायकों और कार्यकर्ताओं की मांग के बावजूद वो मुख्यमंत्री नहीं बने, आगे उनकी भूमिका क्या रहेगी।
मुखिया जो बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, उसके लिए शायद उचित नहीं है कि अपना चुनाव नहीं जीता तो उसको बनाया जाए, इसलिए नहीं बनाया होगा।
आपके समर्थन में बहुत सारे विधायक थे, अच्छे खासी संख्या में विधायक थे, फिर भी
मैं इस बात पे विश्वास रखता हूँ कि बीत गई जो बात गई, आगे की सुधी ले, अब बीत गई ये बात हो चुकी है, उस पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं जमता।
क्या ये फैसला उन विधायकों से मशविरा करके लिया गया होगा या केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला कर देती है पार्टी में वही मान्य होता है?
मैं ऐसा नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि जो प्रतिपक्ष आए थे उनसे चर्चा सबकी हुई होगी और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकला उसके अनुसार केंद्र ने निर्णय लिया। अगर केंद्र ने ही अकेले निर्णय लेना होता तो फिर पर्यवेक्ष को 2-2 बार भेजने की आवश्यकता शायद नहीं रहती।
कई विधायक अपनी सीट छोड़ने को तैयार थे।
मैं नहीं चाहता था कि किसी विधायक ने जिसने नया नया चुनाव जीता हो मेरे लिए अपनी सीट छोड़े उसके कुर्बानी के आधार पर और वो बेचारा बाहर रहे, इसलिए मैंने इसको उचित नहीं समझा।
आप हमीरपुर से लड़ते आए लेकिन इस बार सुजानपुर से लड़ने के पीछे क्या कहानी थी?
संगठन की सोच थी कि अगर मैं सुजानपुर से लड़ूं तो वो सीट भी आ जाएगी, हमीरपुर तो सेफ है, वो तो जीत ही जाएंगे।
आपकी हार के पीछे क्या कारण रहे होंगे?
उन कारणों की चर्चा मैं मीडिया में नहीं करता इसकी,
लेकिन
पार्टी अपने तौर पे करेगी, पता लग जाएगा।
तो हार जाना कहीं ना कहीं आपको अंदर से कुछ तो लगा होगा ना?
नहीं, मैं हमेशा दूसरों को दोष देने की अपेक्षा आत्मनिरीक्षण, आत्म चिंतन करने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है हम नहीं कहीं कमी रही होगी।
अगले 5 साल में धूमल क्या राज्यसभा सांसद या राज्यपाल के रूप में देखे जा सकते हैं?
सारे निर्णय केंद्र के हाथ में होते हैं।
आगे हम आपको किस रूप में देखेंगे ये बता दीजिए।
प्रेम कुमार धूमल भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर।
जयराम ठाकुर के बारे में क्या कहेंगे आप?
बहुत अच्छे नौजवान है। 1993 में पहली बार चुनाव जब मैं प्रदेश अध्यक्ष तब लड़ाया था, 1998 में मैं ही अध्यक्ष था, तब मैं पहली बार चुनाव जीते थे और तब से लगातार 5वीं बार जीते हैं। मेहनती है, एक बड़े जिले से आते हैं और काफी कठिन क्षेत्र से।
लग रहा है जैसे आपने राजनीति से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया हो।
जब तक इंसान जिंदा होता है कहीं रिटायर नहीं होता।
राजनीति से
अन्य गतिविधियों से
कोई कसक दिल में?
कोई कसक नहीं।
प्रेम कुमार धूमल से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी अभिमन्यु साहा। जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाने के बाद पाकिस्तान में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से उनकी मां और पत्नी की मुलाकात को पाकिस्तान अपनी दरिया दिली के तौर पर पेश कर रहा है, मगर भारत ने मुलाकात के तरीके को लेकर आपत्ति जताई है। आने वाले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव के केस की फिर से सुनवाई होने वाली है। हमारे सहयोगी विभुराज ने वरिष्ठ पत्रकार ज्योति मल्होत्रा से बात की और पूछा कि क्या पाकिस्तान दुनिया को ये संदेश देने में कामयाब रहा कि वो बहुत उदार है।
अब यही देख रहा है कि इसका रिएक्शन क्या होगा भारत के अंदर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। अभी कुछ ही महीनों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने भी ये केस फिर दोबारा से आएगा। तो अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन जस्टिस है, लेकिन हम सबको ये देखना है कि ह्यूमैनिटेरियन है कि एक अजीब सा जेस्चर है जहाँ पे आप परिवार वालों को मिलने भी नहीं दे रहे हैं। वो अपने बेटे और अपने पति को देख रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके का जेस्चर जब आप किसी के दिलों में एक होप जो है जागृत करते हैं, तो आपको ये भी मालूम है कि ये हमारा बेटा या मेरा पति जो है ये कभी मेरे पास या मेरे वापस घर नहीं आ सकता। तो ऐसे माहौल में मुझे नहीं लगता कि ये ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है कि क्या है। मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही अजीब किस्म का एक इंसल्ट टाइप का जेस्चर लग रहा है।
क्या आपको लगता है कि मतलब भारत इसे अपने एक डिप्लोमेटिक विन के तरह पेश कर सकता है?
जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारत इस तरीके से पेश कर सकता है कि ये हमारा एक डिप्लोमेटिक विन था। इसमें किसी का डिप्लोमेटिक विन नहीं है, ना ही पाकिस्तान का है ना ही भारत का है।
कुलभूषण जाधव और उनके परिवार के लोग जो शीशे की दीवार थी बीच में, इस तरह से कैदियों के और उनके परिवार वालों के मिलने की व्यवस्था क्या हमारे या पाकिस्तान के जेलों में ऐसा होता है, या वो खास तरह का अरेंजमेंट उस दिन के लिए किया गया था?
ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि इस तरीके से अरेंजमेंट जो कहा जा रहा है जो किया गया है। ये जेलों में शायद विलायत वगैरह में होता होगा कि जेलों में इस तरीके से परिवारों को आप मिलने नहीं दे सकते क्योंकि कैदियों को आप पीछे रखते हैं सिक्योरिटी,
और वो फोन पे बात करते हैं
ये विलायत में देखते हैं हम लोग फिल्मों पे। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, दक्षिण एशिया में, हमारे यहाँ तो इस तरीके से मेरे ख्याल से नहीं होता।
इस मुलाकात का इस केस पे क्या फर्क पड़ेगा?
पाकिस्तान की भी एक किस्म की जीत हुई है कि आपने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कहा कि हमने इस तरीके के कैदी को, ये जो एक स्पाई है, उसको मिलने दिया अपने परिवार से, या मिलने नहीं दिया या देखने दिया। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर पूरे मामले को टटोल के देखें, तो मुझे लगता है कि दुनिया की आंखें इतनी बेवकूफ नहीं है, लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक भारत पाकिस्तान का सवाल है, मुझे लगता है कि सरकारों को, हुकूमतों को आपस में जो भी उनको करना है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, लेकिन इस किस्म से लोगों को, आदमियों को, औरतों को, इंसानों को, जिस तरीके से एक सामने जैसे एक बैठा के और एक उनका वीडियो खींचा और पूरे दुनिया में इसको दिखाया, मुझे लगता है कि ये एक जानवर से और कितना भला हो, कितना ज्यादा ये डिफरेंट होगा।
पाकिस्तान ने भारत से मांग की है कि कुलभूषण जाधव के पेंशन बुक को रिलीज करने के लिए उन्होंने कुछ पेश करने की डिमांड की है।
देखिए, ये सब जो हो रहा है ये सब दिखावे के लिए हो रहा है। भारत भी जानता है क्या हो रहा है, पाकिस्तान भी जानता है क्या हो रहा है। और इस तरह के लोगों को यही मैं कहना चाह रही हूँ कि आम लोगों को आप तमाशा ना बनाएं। अब पाकिस्तान कह रहा है कि आप पेंशन बुक रिलीज कीजिए क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके RNAW के, आपके जो सीक्रेट एजेंसी, सीक्रेट सर्विस है, उसका एक वो एम्प्लॉय था। भारत का ये कहना है कि ये एक आम आदमी था, इसमें कोई, तो अब जो सत्य है वो क्या है किसी को कभी नहीं पता चलने वाला। लेकिन आप किसी आम आदमी की जिंदगी के साथ आप ऐसे खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बेइज्जती वाली बात है।
वरिष्ठ पत्रकार ज्योति मल्होत्रा विश्लेषण कर रही थी जाधव की पत्नी और माँ की मुलाकात का। अखबारों का जिक्र कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं अखबार संदीप आज?
जी मोहनलाल, आज के लगभग सभी अखबारों में जाधव की पत्नी और उनकी माँ के साथ पाकिस्तान के बर्ताव और भारतीय कमांडरों द्वारा पाकिस्तानी सीमा में घुसकर 3 या 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने की खबर को अखबारों ने पहले पन्ने पर लिया है। कुछ अखबारों में 3 लिखा गया है, कुछ में 4 लिखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सभी मामले रद्द करने का फरमान जारी किया है
जी।
और ये आदेश विधानसभा में 21 तारीख को उत्तर प्रदेश क्रिमिनल लॉ संशोधन बिल पेश किए जाने के 1 दिन पहले दिए गए। द स्टेट्समैन की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि नवंबर में GST कलेक्शन अपने निम्नतम 80,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया, इससे पहले 83,000 करोड़ कलेक्ट हुआ था।
तो जो संशोधन हुए उसके बाद
जी
आंकड़े बदल गए।
हाँ, संशोधन क्या, GST रेट जो है बहुत सारे वस्तुओं पर कम हो गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सोमवार की रात कम से कम 32 नसबंदी ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी में किए गए, इसको लेकर के CMO को ट्रांसफर किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि नियमों की अनदेखी करने पर महाराष्ट्र में 60,000 ट्रस्टों जो कि अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनका पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। द हिंदू की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जयराम ठाकुर के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी,
मतलब खबरें इस तरह की हैं कि 18 या 16 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में शामिल हो पाएंगे और एक तरह से एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश।
हाँ, बहुत विशाल ये वो हो रहा है,
आयोजन हो रहा है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर है जिस पर हम ध्यान दिलाना चाहेंगे, उसमें कहा गया है कि कैग ने इस बात को रेखांकित किया है कि 25% जो स्वच्छ भारत टैक्स था, सेस था, उसका 25% हिस्सा उस डेडिकेटेड फंड में जमा ही नहीं किया गया, वो अभी भी,
मतलब वो काटा जाता रहा लेकिन वो उस जगह पर पहुंचा नहीं जहां के लिए ये निर्धारित
था। और ये राशि 4,000 करोड़ के आसपास है।
एक और जिक्र करना चाहूंगा कि IAS दंपत्ति का ब्यौरा, IAS जो है वो संपत्ति का ब्यौरा दे तभी उनको पदोन्नति मिलेगी, ये जो खबर है ये हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर छापी है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप राय, और अब कार्यक्रम में हम खेल की खबरें सुनेंगे।
खेल समाचारों के साथ इंदु पांडे। ICC की ताज़ा T20 रैंकिंग में भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और KL राहुल ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के दम पर इस प्रारूप की बल्लेबाजी रैंकिंग में एक लंबी छलांग लगाई है। तो वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपनी शादी की वजह से सीरीज में नहीं खेलने के कारण अपने टॉप का स्थान खो दिया है। बल्लेबाजी रैंकिंग की बात की जाए तो इस सीरीज में नहीं खेलने से कोहली को 48 अंकों का नुकसान हुआ है। अब जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका जाएगी तो ऐसे में विराट कोहली से उम्मीद सबको बहुत ज्यादा होगी। क्या कहते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट विजय धैया?
देखिए, कप्तान एक बात होती है लेकिन वो इस तरह भारतीय टीम के सबसे बढ़िया बल्लेबाज थी, तो जो उनके लिए जिम्मेदारी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और वो बिल्कुल दुगनी हो जाएगी, एक कप्तान के हिसाब से भी पर एक बल्लेबाज के हिसाब से भी।
क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी नहीं खेलता तो ऐसे में एक मैच नहीं खेलने की वजह से अपने रेटिंग अंकों को 2% गंवाना पड़ता है। विराट के नहीं खेलने से इसका फायदा हुआ ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच को, जो अब टॉप पर हो गए हैं। हालांकि कोहली और फिंच के बीच में सिर्फ 8 अंकों का अंतर है। टीम की बात करें तो रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने ये सीरीज जो श्रीलंका के साथ हुई 3-0 से जीती, जिससे वो टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। और अगर हम बात करें फुटबॉल की तो 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत में हुए थे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मीडिया डायरेक्टर निरंजन दत्ता कहते हैं कि 2017 बहुत ही अच्छा रहा भारतीय फुटबॉल के लिए। मैंस टीम की बात करें,
परफॉर्मेंस वाइज सीनियर नेशनल टीम का रैंकिंग्स इस बार बहुत आगे आया है और इसकी कारण यह है कि 13 अनबीटन मैचेस इंटरनेशनल मैचेस में भारतीय फुटबॉल में ऑल टाइम रिकॉर्ड है।
तो इस वक्त करंट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का स्थान है 105। तो आगे इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला साल फुटबॉल के लिए भी शानदार होगा।
खेल की खबरों के बाद अब एक बार फिर से मुख्य समाचार सुनते हैं।
BBC समाचार। बीजिंग में एक त्रिपक्षीय बैठक के बाद चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि वो चाहते हैं कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अफगानिस्तान शामिल हो। अफ्रीकी देश लाइबेरिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 70 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सत्ता का लोकतांत्रिक तरीके से हस्तांतरण हो रहा है। प्रधानमंत्री के अपना वेतन बढ़ाने को लेकर कोसोवो में प्रदर्शनकारी सरकारी इमारत की रेलिंग पर टाई बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने वाले 2 अधिकारियों पर अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि अफगानिस्तान की सीमा पर अमेरिकी ड्रोन हमले में हक्कानी नेटवर्क के कमांडर की मौत हुई है। जवाबी कार्रवाई करते हुए ब्राजील की सरकार ने वेनेजुएला के सबसे वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। BBC समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में आज बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोठिया। शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में वर्षांत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।